मलाकी तीसरा बाब आयत नंबर 13 से खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं। यही मेरा टॉपिक है, बातें, गुफ्तगू। ठीक है जी, खुदा ये कह रहा है कि तुम जो बातें करते हो मेरे खिलाफ वो कैसी हैं? बड़ी सख्त हैं। तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा। भाई वहीद का फिक्रा बड़ा अच्छा है कि गल्लां बढ़िया करते यानी बातें भी करते हैं और सख्त बातें भी करते हैं और फिर कहते हैं हमने क्या कहा है। हमने तो कुछ भी नहीं कहा, यानी जो हम कह रहे हैं वो शायद इतनी सख्त बात नहीं है, लेकिन खुदा कह रहा है तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं। खुदा उनको सख्त कंसिडर कर रहा है। तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा। अब खुदा उनको रिकॉर्ड देने लगा है कि तुमने क्या कहा है। What have you said? कहता तुमने कहा खुदा की इबादत करना अब से, ये चर्च जाना, गीत गाना, प्रस्तुति करना, क्या फायदा? बेफायदा। रबुल अफाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना ला हासिल है। और अब हम मगरूरों को नेक बख्त कहते हैं, शरीर बरोमंद होते हैं और खुदा को आजमाने पर भी रिहाई पाते हैं। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की। दुनिया के लोग बातें कर रहे हैं और खुदा के लोग भी गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने आपस में गुफ्तगू की और लिखा है खुदावंद ने मुतवज्जो होकर सुना। और उनके लिए जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते थे, उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। रबुल अफाज फरमाता है उस रोज वो, यानी जो खुदा की बातें करते हैं, वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मलकियत होंगे और मैं उन पर ऐसा रहीम होऊंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। अब तुम रजू लाओगे और सादक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। फिर आपको समझ आएगी कि जो इबादत करते हैं उनमें और जो चर्च नहीं जाते उनमें क्या फर्क होता है। आइए दुआ करें। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो, हालेलुया हालेलुया। भाई एलन शाम से मेरी दरखास्त है वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें।
लॉर्ड जीसस, वी थैंक यू फॉर योर वर्ड दिस मॉर्निंग। We thank you for your presence that is in this place. Now we ask that you would anoint your messenger, Lord. Let him speak with clarity, with unction, with power, and with anointing. May we receive the word of God to our hearts, Lord Jesus. Touch us each by your power and by your spirit now. We give you the glory and the praise. In Jesus' name we pray.
Hallelujah. 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 हालेलुया हालेलुया। आप सब बैठे हैं, तशरीफ रखें। हालेलुया हालेलुया। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावंद ने मुतवज्जो होकर सुना। इस बात पर मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए गौर करें। दुनिया के लोग फरक फरक किस्म की बातें कर रहे थे। यहां पर वो कह रहे थे खुदा के घर में जाना, उसकी इबादत करना बेफायदा है। कह रहे थे उसके हुक्मों पर अमल करने से क्या फायदा। शायद कोई आदमी उनके सामने हो कि ये बंदा तो सारी उम्र खुदा के साथ साथ चलता रहा और आज उसकी कंडीशन देखें, उसकी हालत देखें कि उसकी तो हाल ही बुरा है, उसका तो बिजनेस भी नहीं अभी सेट हुआ, ये वैसे ही खुदा के साथ साथ चलता रहा, फायदा क्या हुआ। कह लोग बातें कर रहे थे कि खुदा की इबादत करना बस है, रब अल्फाज के हुक्मों पर अमल करना, उसके हजूर मातम करना ला हासिल है। ये ऐसे ही रोते रहते हैं खुदा की हजूरी में जाकर, इनको हासिल क्या हुआ है, फायदा क्या हुआ है। ये भाई एलन शाह में ये 25 साल वो पाकिस्तान में जाकर खिदमत करते रहे हैं दीगर मुल्कों में, और जब एंड हुआ है खत्म करके घर वापस आए हैं, इनको क्या हासिल हुआ है। हम सब के अपने अपने घर है, इनका अपना घर भी कोई नहीं, क्या फायदा हुआ। हासिल क्या हुआ है? खुदा कहता है इस तरह की बातें हैं जो ये लोग कर रहे थे, इन लोगों की गुफ्तगू ऐसी है। और आप जानते हैं आज भी दुनिया के लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, दुनिया के लोगों की बातें आप सुनते हैं, स्पेशली वो लोग जो दफ्तरों में काम करते हैं, जो दुनिया में रहते हैं, आप दुनिया के बातें सुनते हैं, कैसी गुफ्तगू होती है? पॉजिटिव होती है, उनकी गुफ्तगू को बड़ी कंस्ट्रक्टिव होती है, तामीरी गुफ्तगू होती है, तरक्की का बायस होती है। और दुनिया की बातें आप सुने, उनकी बातों में आपको झूठ नजर आएगा, कोई बंदा सीधी बात कर ही नहीं रहा, जो भी बात करता है वो झूठी बातें करता है, ऊपर से लोग कुछ होते हैं अंदर से वो कुछ होते हैं। ऐसे ही है, आपसे बड़े मीठे बातें कर रहे हैं लेकिन जो ही मौका मिलेगा वो आपको डंग मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से वास्ता है, उनकी बातें देखें, उनकी गुफ्तगू देखें, उनकी उनकी बातों को देखें, रियाकारी की बातें हैं, फरेब की बातें हैं, धोखे की बातें हैं, करप्शन की बातें हैं। जब ऐसा माहौल हमारे चारों तरफ मौजूद हो तो क्या ये पॉसिबल है कि खुदा के लोगों की बातें ऐसे दुनियादार लोगों की बातों में भी अच्छी बातें हों और हमारी गुफ्तगू में और उनकी गुफ्तगू में फर्क हो? ये पॉसिबल है? मेरे ख्याल में हमारी गुफ्तगू में फर्क होना चाहिए, मेरे ख्याल में हमारी बातें उनकी बातों से फर्क होनी चाहिए। हम जब भी मुंह खोलें, हम जब भी अपनी जबान से अल्फाज अदा करें, हमारे अल्फाज खुदा की तारीफ और परस्तिश के हों। हम ये बातें कर रहे हों, खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। हम जब बातें करें तो हम ये बातें कर रहे हों कि खुदा ने मेरे लिए ये बड़े बड़े काम किए हैं। हमारी बातें लोगों को बरकत देने का बाइस बने, हमारी गुफ्तगू ऐसी हो जैसे लोगों को तकवीयत मिले और लोग पहले से बेहतर फील करें। क्या ये मुमकिन है कि हमारी बातें ऐसे माहौल के अंदर भी दुनिया के लोगों से फर्क हो, या हमारी बातें लोगों की बातों से मुतासर होकर वैसी हो जानी चाहिए, फर्क होना चाहिए? इसके लिए जो मेरे दिल में बात है, नू मुझे बड़ा पसंद है इस मामले में। सारी दुनिया शरीर हो गई है लेकिन लोगों की बातें उस वक्त भी अच्छी नहीं होंगी। नू मुनादी कर रहा है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तमस्कर उड़ा रहे हैं। अच्छी बातें खुदा के लोगों का आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको बातें करते हैं, लेकिन नू उस शरीर जमाने में भी लिखा मर्दे खुदा था और रास्तबाज था, मगर नू खुदा की नजरों में मकबूल ठहरा। लेकिन गौर करें माहौल कैसा है, मुआशरा कैसा है, इर्द गिर्द बातें कैसी हो रही हैं, लोगों का करेक्टर कैसा है। लेकिन ऐसे नेगेटिव माहौल के अंदर रहते हुए भी नू उनमें मुनफरद और नमाया हैसियत में नजर आ रहा है। एली काहिन के घर का माहौल और उस दौर का माहौल और सर्कमस्टेंसेस देखें, कोई पॉजिटिव है बात? एली का क्या करदार है उसे समझ ही नहीं, और उसके बेटों का क्या करदार है। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर भी सैमुअल खुदा के साथ है और खुदा की आवाज सुन रहा है और खुदा उससे बातें कर रहा है। हर तरह के माहौल में खुदा ये चाहता है कि इर्द गिर्द बातें चाहे कैसी भी क्यों ना हो रही हो, मेरे लोग जब अपने मुंह को खोलें और उनकी जबान से जब अल्फाज अदा हों तो वो मेरी तारीफ और हमदो सना के अल्फाज हों, वो परस्तिश के अल्फाज हों, वो लोगों को बिल्डअप करने के अल्फाज हों। ये है वो बातें जो खुदावंद खुदा पसंद करता है। और मैं इस हवाले को फिर पढ़ने लगा, मेरी काश है कि ये हवाला हमें याद हो जाए। यहां पर लिखा है तुम मेरी बातें तुम्हारी बड़ी सख्त है, और फिर तुम कहते हो हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा? तुमने कहा खुदा की इबादत करना बस है, खुदा के हुक्मों पर अमल करना बस है, उसके हजूर मातम करना ला हासिल है। मगरूरों को नेक बख्त कहते हो, शरीर बरोमंद होते हैं और खुदा को अजमाने पर भी रिहाई पाते हैं। इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं। और आगे लिखा है तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावंद ने मतवज्जो होकर सुना। ऐसे माहौल में जब हर तरफ नेगेटिव बातें हो रही थी, खुदा के लोग बातें करने लगे और खुदा ने कान लगाकर सुना कि ये मेरा बंदा है जो ये बात कर रहा है। और कैसी खूबसूरत इसने बात की है, क्या अच्छी बात की है कि रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह। और ये इस बंदे ने ये बात की है, खुदा ने कहा ओके इसको रिकॉर्ड कर ले, इसको लिख ले। काम के अंदर लिखा खुदा तरसों ने गुफ्तगू की, खुदा ने मुतवज्जो होकर सुना, और उनके लिए जो खुदा से डरते और उसके नाम को याद करते थे उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया, लिख लिया। वैसे खुदा रिकॉर्ड करता है, ये जो मीटिंग चल रही है ना, ये रिकॉर्ड हो रही है पीछे, जो लफ्ज मैं कह रहा हूं दे आर बीइंग रिकॉर्डेड। हमने तो आज ये सिस्टम शुरू किया है, खुदा ने शुरू से ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया हुआ है, जो बात आप करते हैं खुदा रिकॉर्ड करता जा रहा है, खुदा के हजूर हर चीज लिखी जा रही है। और इसलिए केयरफुल रहें कि आपकी जबान से कैसे अल्फाज निकलते हैं, केयरफुल। बाइबल के अंदर लिखा है तो अपनी बातों ही के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों ही के सबब से मुजरिम ठहराया जाएगा। बातें कैसी करते हैं जब आप बैठे होते हैं, गुफ्तगू कैसी होती है? अब मैं आपको एक बात बताने लगा, खुदा हमारी हर बात सुन रहा है, वो सुन रहा है, एक एक लफ्ज खुदावंद खुदा सुन रहा है। और स्पेशली जो खुदा से डरते हैं और उसके नाम को याद करते हैं उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही है, उनकी बातें लिखी जा रही है। तो मैं पता क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं हम खुदा के लोग होते हुए जब भी बातें करें उनसे खुदा का खौफ नजर आए, खुदा का खौफ झलक रहा हो, और जब हम बातें करें तो हम खुदावंद के नाम को याद करें। आप जानते हैं खुदा का नाम क्या है? क्रिसमस है और यहां पर नाम की बड़ी अहमियत है। खुदा का नाम, बहुत से लोग हैं जिनको ये नहीं पता हमारे माबूद जिस खुदा की हम प्रस्तुति करते हैं उसका नाम क्या है। हिंदू जिस खुदा की प्रस्तुति करते हैं उनके नाम को उन्हें पता है? उन्हें पता है। जो किसी और मजहब का बंदा हो उसे पूछे तेरे खुदा का नाम क्या है जिस खुदा की तू प्रस्तुति करता है, पता है उसे? उसके उसके नाम का पता है। वेल, हमारा खुदा जिसकी हम प्रस्तुति करते हैं, क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम यीशु नाम है, क्योंकि खुदा के नाम बहुत से नाम है। पुराने अहदनामे में उसका नाम लिखा गया, बहुत से नाम है, लेकिन एंड में जो नाम सब नामों से आला नाम है, वो नाम जो खुदा का नाम है जो रिवील हुआ है। और उसने कहा यीशु खुदा था जो इंसानी सूरत में इस दुनिया में आया, और फरिश्ते ने कहा उसका बेटा होगा और तूने उसका नाम यीशु रखना है क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। नाम इमानुएल है, उसका नाम अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा, ये नाम नहीं है। वो नाम तो इमानुएल उसका होना चाहिए, लेकिन आपको पता फर्क क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव नेम्स हैं, खुदा के करैक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, सिफाती नाम है जिनको कहा जाता है, खुदा की सिफतों को बयान करते हैं। मुहैया करने वाला है यहोवा यरी है, यहोवा निस्सी है, वो हमारा झंडा है, वो हमें फतह देता है। लेकिन एक नाम, ये खुदा को बयान करने वाले नाम है, लेकिन एक नाम है जो उसने एंड में जाहिर किया, क्योंकि यशायाह की मार्फत उसने फरमाया था कि उस रोज मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे। और खुदा ने जो नाम अडॉप्ट इख्तियार किया है पैदा होने से पहले, फरिश्ते ने वो नाम लिख दिया और कह दिया उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो आज मैं इस बात के लिए खुश हूं कि हम जानते हैं कि हमारे खुदा का नाम क्या है, और वही नाम है जिस नाम को हम सरफराज करना चाहते हैं, और उसी नाम के हम गीत गाना चाहते हैं, और उसी नाम को हम सरबुलंद करना चाहते हैं। इसलिए तो हम गा रहे थे, वो दिन यीशु नासरी का नाम जो हरदम यीशु यीशु कहते हैं वही हैं जो खुश रहेंगे। यीशु नाम के गीत हमें गाने चाहिए। लगता है शायरों को यहोवा नाम शायद ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि हमारे नाम गीतों में अक्सर यहोवा यहोवा चल रहा है। मेरे ख्याल में यहोवा की जगह अब जो नया नाम यीशु नाम खुदा का जाहिर हुआ है, वो नाम है जो हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। और खुदा करे हमें ऐसे शायर खुदा दे भाई महबूब नाज जैसे जो लिख लेते हैं, और ऐसे शेर वो लिखें जिसमें किस नाम का जिक्र हो। क्योंकि जो लोग खुदा से डरते हैं और वो लोग जो उसके नाम को याद करते हैं, खुदा के हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। तो मैं ये चाहता हूँ मैं खुदा के नाम का जिक्र करूं। मैं कहूं मैं इस मुसीबत में था, यीशु ने मुझे रिहा किया है। मैं बीमार था, मेरी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन यीशु ने मुझे शफा दी है। हमें सारा जलाल किसको देना चाहिए? हमारी गुफ्तगू, हमारी बातें, इसमें मरकजी हैसियत जो सेंट्रल थीम हमारी गुफ्तगू की हो, वो खुदावन यीशु होना चाहिए। जब हम बातें करें तो किसकी करें? वैसे पता है हकीकत क्या है? जो चीज आपके जेन पर छाई हुई हो ना, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जहां पर आपका खजाना है, जहां पर आपका इंटरेस्ट है, वही बातें करेंगे। ऐसे ही है, एक आदमी है जो पैसे की फिक्र में रहता है, जब भी आप उसके पास बैठेंगे वो वही बातें करेगा। ये बिजनेस था, इसमें मुझे घाटा पड़ गया, इसमें मैं ये कर रहा हूं ताकि पहले से बेहतर हो जाऊं। ऐसे ही है, एक बंदा जो एजुकेशन का बोझ रखता है, जब भी वो बोलेगा यही कहेगा, जो जी बच्चों की तालीम ये होनी चाहिए, उसको ये होना चाहिए। लेकिन जो बंदा अपने खुदा से प्यार करता है, जो जब भी बातें करेगा वो अपने खुदा की बातें करेगा और यीशु नाम की बातें करेगा। और मैं ऐसा शख्स बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं। बाइबल के अंदर लिखा है दो कैटेगरी से, जो खुदावन से डरते और उसके नाम को याद कर, दे दैट फियर द लॉर्ड एंड कॉल ऑन हिज नेम, यही लिखा है। शुक्र है अंग्रेजी जानने वाले बैठे हुए। खुदा से डरना चाहिए। खुदा का खौफ असल में जो हमारे अंदर होगा, जो हमारी नेचर होगी, वही हमारी बातों से निकल रहा होगा। कलाम के अंदर लिखा है जो कुछ दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। जो आपके अंदर होगा आपकी बातों से वही रिवील होगा। वैसे मैं आपको एक फार्मूला बताने लगा हूं, अगर जानना चाहते हैं ना बंदा कैसा है, उसके अंदर क्या है, उसके ख्यालात क्या हैं, उससे बैठकर बातें कर लें। एक घंटा आप उससे गुफ्तगू करें, आपको पता चल जाएगा उसके अंदर क्या है। ऐसे ही है, ये जो लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू करते हैं क्या करते हैं? बातें ही नहीं करते। पूछते हैं जी आपका नाम क्या है, कहां पर आप रहते हैं, कहां आपने काम किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। उन्हें फौरन आइडिया हो जाता है कि ये बंदा हमारे काम का है या नहीं है। बातें करने से, गुफ्तगू करने से किसी के अंदर का पता चलाना हो उसकी बातों से पता चल जाएगा। लेकिन जो बंदा खुदा की बातें कर रहा है, जो उसके खौफ की बातें कर रहा है, कि जो उस पर भरोसे की बातें कर रहा है, जो यीशु नाम को सर्वबुलंद कर रहा है, इससे जाहिर होता है कि वो यीशु का दीवाना है और यीशु के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार है, इसलिए वो उसकी बातें करता रहता है। वो हमारे इर्द गिर्द लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, वो हमारे इर्द गिर्द लोग अच्छी बातें नहीं कर रहे, लेकिन इनके बीच में बैठकर भी हमें किसकी बातें करनी चाहिए? यीशु की बातें करनी होगी। हमें बताना होगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, अगर मैं आज कुछ हूं, ये जिंदगी मुझे यीशु ने दी है, ये सब कुछ मुझे खुदा ने दिया है, मैं उसके नाम को जलाल देना चाहता हूँ, मैं उसके नाम को सर्वबुलंद करना चाहता हूँ। और खुदा से डरने वाले लोगों की हैसियत में लोग हमें पहचाने, खुदा हमारी हर एक बात सुन रहा है। मैं एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, गिनती की किताब उसका अगर आप 13वां बाब पढ़ें, 14वां बाब, तो यहां पर 13वें और 14वें चैप्टर में यह हुआ कि मूसा ने 12 जासूस इसराइल के मुल्क में भेजे, वो ऐन उसकी सरहद पर पहुंच गए थे और उन्होंने आकर रिपोर्ट दी, 10 ने बुरी रिपोर्ट दी और 2 ने आकर अच्छी रिपोर्ट दी। उन्होंने ये कहा कि मुल्क तो बहुत अच्छा है लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं वो बहुत जबरदस्त हैं और हम इस लायक नहीं हैं कि हम उन पर कब्जा कर सकें। और उन्होंने कहा तो हम तो अपनी निगाह में ऐसे थे जैसे घास के ये टिड्डे होते हैं, हमारी तो पोजीशन ही ये थी। और जब लोगों ने ये रिपोर्ट सुनी तो 14वें बाब की पहली आयत में पढ़ने लगा हूं, लिखा तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी। क्या करने लगे? चीखे मार रहे हैं। और वो लोग उस रात रोते ही रहे। वैसे पता चीखें कब लोग मारते हैं? जब डरते हैं, फियर। ये लोग डर रहे हैं, चीख रहे हैं और रो रहे हैं। और कुल बनी इसराइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते या काश इस बियाबान ही में मरते। क्या कह रहे हैं? काश वही मर जाते या इस बियाबान में ही मरते। खुदावंद क्यों हमको इस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? और वो आपस में कहने लगे। ये बातें वो एक दूसरे से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? काश हम मिस्र में ही मर जाते या इस मुल्क में, इस बियाबान में ही मर जाते। वहां जाकर उन लोगों के साथ लड़कर हम वहां मरना नहीं चाहते, यहां पर ही मर जाना चाहते। खुदावंद आया, खुदावंद ने कलाम किया। और इसके बाद अगर 26वीं आयत इसी बाब की आप पढ़ें, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस ग्रोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? बनी इसराइल जो मेरे खिलाफ शिकायतें करते रहते हैं वो सब शिकायतें मैंने सुनी हैं। ये समझ रहे थे हम मूसा से शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन खुदा कह रहा है जो तुम मूसा से शिकायतें करते हो, जो तुम आपस में बातें करते हो, मैं वो सुनता हूं। खुदा सुनता, कहता वो सब मैंने सुनी है। सो तुम उनसे कह दो, खुदावंद कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम, जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है मैं तुमसे जरूर वैसा ही करूंगा। कैसा करूंगा? जैसा तुमने कहा है। और खुदा कह रहा है मेरे सुनते हुए तुमने ये कहा है। इट मींस जब वो कह रहे थे, गॉड वॉज लिसनिंग। उसने कहा मैं सुन रहा था तुमने ये कहा। क्या कहा? काश हम इस बियाबान में ही मर जाते। उसने कहा ओके, तुमने ये कहा है, मैं यही मुकर्रर कर रहा हूं, तुम इस बियाबान में ही मरोगे और तुम में से कोई भी उस वादे के मुल्क में जाने नहीं पाएगा। साबित क्या हुआ? जो बातें हम आपस में करते हैं खुदा सुन रहा होता है। सो केयरफुल रहे क्या बातें करते हैं। शायद जिसके खिलाफ हम बातें कर रहे हैं वो ना सुन रहा हो, लेकिन खुदा सुन रहा है। कहा जाता ना ये साइलेंट गेस्ट इन दिस हाउस, वो जो साइलेंट है लेकिन वो सुन सारा कुछ रहा है। कई दफा लोग चुप करके बैठे सारा सुनते रहते हैं, खुदावंद सारा कुछ सुन रहा है। और हमें केयरफुल रहना होगा हम कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं। एक और एग्जांपल पर आप गौर करें, खुदावंद यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ योहन्ना की अंजील के अंदर, और जिंदा होने के बाद वो शागिर्दों पर जाहिर हुआ। और जब वो जाहिर हुआ तो उसने अपने हाथ और पांव उनको दिखाए। तूमा उस वक्त उनके बीच में नहीं था। तूमा जब मिला तो उन्होंने उसे बताया कि खुदावंद यीशु हमसे मिला है, उसने हमसे बातें की हैं और वो जिंदा है। तूमा ने कहा मैं नहीं मानता जब तक मैं उसके जख्मों में उंगली डाल करना देख लूं और उसकी पसली में हाथ डाल करना देख लूं, मैं नहीं मानूंगा। गौर करें ये बातें उसने किससे कही थी। आपस में बातें कर रहे हैं ना, बाकी शागिर्दों से उसने ये कही है ना, लेकिन खुदा भी सुन रहा था। सो बाइबल के अंदर लिखा है योहन्ना की अंजील 20वां बाब और 26वीं आयत में, 8 दिन के बाद वो फिर एक जगह पर जमा थे और तूमा भी उनके साथ था और दरवाजे बंद थे। यीशु उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उसने कहा तुम्हारी सलामती हो। यीशु ने और कोई बात नहीं की, डायरेक्ट तूमा से मुखातब हुआ और उसने कहा तूमा अपनी उंगली ला और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। और तूमा हैरान रह गया कि मैंने तो ये बातें बाकी शागिर्दों से कही थी, खुदावन तो एग्जैक्ट वही वर्ड यूज कर रहा है जो मैंने कहे थे। इसका मतलब है जब वो बातें कर रहे थे खुदावन यीशु सुन रहा था और वो एक एक लफ्ज जानता है, एक एक हर्फ जानता है। देखा ना, खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की। اور خدا نے ایسے کان لگا کر سنا, متوجہ ہو کر سنا. اور آپ جانتے ہیں ہماری باتیں کیسی ہوں گی, جیسا ہمارا اندر ہے. کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ بناتا ہے, جو دل میں اندر ہے وہی آپ کی زبان پر ہے. تو میری آج یہ دعا ہے, درخواست ہے کہ ہم خدا سے یہ کہیں کہ خداوند میرے اندر کو بدل دے, میرے دل کو بدل دے, تاکہ جب میں بولوں تو خداوند تیری پرستش کے گیت گاؤں, تیرے نام کو یاد کرنے والا بنوں. خداوند میں تجھ سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے نجات کا کام کرتے جانا چاہتا ہوں. خداوند خدا میری باتیں ایسی ہوں جو تجھے پسند آئیں. تو میرے بارے میں یہ نہ کہے کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے میرے خلاف ہیں اور یہ بڑی سخت باتیں ہیں. میں چاہتا ہوں جب خدا میرے بارے میں کہے, وہ کہے یہ میرا بندہ ہے, اس نے جو باتیں کی ہیں یہ لکھ لی جائیں, اور خداوند خدا ان باتوں کے ساتھ ہی ان کے حساب سے ہمیں راست باز ٹھہرائے گا اور باتوں ہی کے حساب سے ہمیں مجرم ٹھہرائے گا. یہ آیت بڑی زبردست ہے, میرا دل چاہ رہا ہے اس کو پڑھ لوں. متی کی انجیل اس کا 12 باب اور 34 آیت, 34 متی کی انجیل 12 باب آیت نمبر 34 ہے. سانپ کے بچوں تم برے ہو کر اچھی باتیں کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ جب وہ ہی برے تو باتیں کیسی ہوں گی؟ وہ بھی بری ہوں گی, اچھی تو نہیں ہو سکتی. خدا کہہ رہا تم برے ہو کر اچھی باتیں کیوں کر کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے. جیسا دل ہوگا ویسی ہی آپ کی باتیں ہوں گی. آگے لکھا ہوا ہے اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے, برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. اس کا مطلب دل ہمارا ایسے جیسے خزانہ ہے اور منہ ہے جہاں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں. سو رستہ یا دروازہ دل کے خزانے کا منہ ہے. سو اگر چیزیں بری نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب پیچھے سورس جو دل ہے خزانہ, اس میں چیزیں بری سٹور ہوئی ہیں. اور میں تم سے کہتا ہوں 36 آئے, جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے. کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا. تو اپنی جو نکمی بات لوگ کہیں گے, کیسی بات؟ نکمی باتیں ہمیں نہیں کہنی چاہیے. ہمیں کیسی باتیں کرنی چاہیے؟ اچھی باتیں, تعمیری باتیں, پازیٹو باتیں, خدا کی پرستش, حمد و ثنا کی باتیں, ایسی باتیں جن سے خدا کے نام کو جلال ملے. کیونکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا. کیوں بھلا؟ کیونکہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, باتیں لکھی جا رہی ہیں. کلام کے اندر لکھا نا, مکاشوا کی کتاب اس کے 20 چیپٹر میں کتابیں کھولی گئی, اور جیسا ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا اس کے مطابق لوگوں کا انصاف کیا. سو جیسی آپ کی باتیں ہیں, جیسے آپ کے اعمال ہیں, خدا کے ریکارڈنگ سسٹم میں سب فیڈ ہو رہا ہے. آخری دن نکالا جائے گا اور باتوں کے سبب سے تو قصوروار ٹھہرایا جائے گا اور باتوں کے سبب سے تو راست باز ٹھہرایا جائے گا. تو ہماری باتیں کیسی ہیں؟ کیا ہماری باتیں اس لائق ہیں کہ خدا متوجہ ہو کر ان کو سنے اور اپنے ریکارڈ میں رکھے اور خدا ہماری باتوں سے خوش ہو؟ پتہ وجہ کیا ہے؟ کلام کے اندر خوبصورت آیت ہے, لکھا اسرائیل کا خدا اپنے بندوں کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے. وہ ایسے نیگیٹو ماحول میں جب دنیا خدا کو مانتی نہیں ہے, جب دنیا خدا کے خلاف ہے, ایسے لوگ جب یسوع کو عظمت دینا شروع کرتے ہیں, اس کو سربلند کرنا شروع کرتے ہیں, خدا ایسی جگہ پر متوجہ ہوتا ہے, اور نہ صرف متوجہ ہوتا ہے بلکہ وہاں پر آ جاتا ہے اور اس کا تخت اس جگہ پر لگ جاتا ہے. یہ ریزن ہے, یہ وجہ ہے. سو میں خدا کے حضور میں ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو خدا کے نام کو جلال دینے کا باعث ہو. ہماری گفتگو کیسی گفتگو ہے؟ میری باتوں سے خدا کے نام کو جلال ملے. سو یہ دعا کریں, اپنے سروں کو جھکائیں خدا کی حضوری میں اور ہم دعا مانگیں. ہللویا, 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 ہللویا. خدا میری زندگی کو بدل, میری زبان کو تو اپنے ہاتھوں میں لے لے. اے خداوند, میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا جو تجھے پسند نہ ہو, بلکہ میں ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جس سے تیرا یسوع نام جلال پائے. ہللویہ, تو نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے کہ میں تیری پرستش کروں. خداوند, میں تیرے نام کی عظمت کا بیان کرنا چاہتا ہوں. یسوع کے نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھک جائے گا. تیرا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ تیرے نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے. خداوند, جو کچھ بھی میں ہوں تیرے سبب سے ہوں, تیرے نام کی وجہ سے ہوں. تیرا نام ہے جس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ مٹ گئے ہیں. تیرا نام ہے جس نے ہمیں رہا کیا ہے. تیرا نام ہے جس نے ہمیں شفا بخشی ہے. میں تیرے اس نام کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ہللویہ, 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 رب ادب رب ادا رہا رہا. خدا, میں تیری عظمت کا بیان کرنا چاہتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے. ہللویہ, میں تیری عظمت کا بیان کرنا چاہتا ہوں. میں تیری شفقت کا بیان کرنا چاہتا ہوں. تو نے جو بڑے بڑے کام کیا ہے, میں ان کے سبب سے تیرا شکر ادا کرتے رہنا چاہتا ہوں. ہللویہ, 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 پریز گاڈ. خدا, تو کتنا اچھا ہے, تو کتنا بھلا ہے, تو کتنا مہربان ہے, تو کتنا عظیم ہے. ہللویہ, 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 پریز گاڈ, پریز گاڈ, ہللویہ, 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 ہللویہ. تو سب کچھ دیکھتا ہے, تو سب کچھ سنتا ہے. اے خداوند, تیری آنکھیں تیرے لوگوں پر ہیں, تیری نگاہ تیرے مقدسوں پر ہے, اور تیرے کان ان کی دعا پر لگے ہوئے ہیں. ہللویہ, ہللویہ, تو دیکھتا ہے, تو جانتا ہے, تو سنتا ہے. ہللویہ, رب ازا بلہوریا ایلا بلا زا رب ازا رازا کا ایلا بلا رب ازا رہا. ہللویہ, 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 پریز گاڈ, ہللویہ. آئیے خداوند سے کہیں, اگر خدا نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے, کوئی مہربانی کی ہے, آئیے اس کا شکر ادا کریں. کیونکہ شکر گزاری کی قربانیاں ہیں جنہیں خدا پسند کرتا ہے. اسے کہیں, خدا, میں تیرے نام کے لیے تیرا شکر گزار ہوں, جس نام سے میرے گناہ مٹ گئے, جس نام سے میرے شفا مل گئی ہے. آئیے اس کا شکر کریں, اس کے نام کو مبارک کہیں, اس کے نام کی تعظیم کریں. ہللویہ, تو بھلا ہے, تو مہربان ہے, تو محبت کرنے والا خدا ہے. جب ہم اس لائق نہ تھے, تو نے ہم سے محبت کی ہے, اور ہمارے گناہوں کے لیے تو نے اپنے آپ کو دے دیا. تو انسان بن کر اس دنیا میں آیا. میں تیری اس محبت کے لیے تیرا شکر گزار ہوں. ہللویہ, 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 ہللویہ,
ہللویہ, ہللویہ, praise God, praise God, praise God. Tera shukr hai, Khudaavand, tera shukr hai. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
खुदावंद यीशु हमारा नमूना है, वही हमारी एग्जाम्पल है जिसको हमने फॉलो करना है। लूका के अंजील उसके चौथे बाब में लिखा है, जब खुदावंद यीशु ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो लिखा है वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी। सब्बत के दिन खुदावंद यीशु चर्च जाया करता था, तो वो भी इबादत खाने में गया। जब वहां पर गया तो यशाया नबी की किताब उसको दी गई, उसने उसको पेज उल्ट पुलट किए और यशाया की किताब 61 बाब 61 उसने निकाला। उसने कहा खुदावन का रूह मुझ पर है, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करूं। ये पढ़ने के बाद किताब उसने बंद की, खादम को दे दी जो किताब की केयर कर रहा था, लुक आफ्टर कर रहा था, उसको वापस देकर बैठ गया। और 20वीं आयत पर पढ़ें, मेरे साथ निकालें लूका की अंजील चौथा बाब 20वीं आयत। और लिखा जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। किस पर आंखें लगी हैं? मेरे ख्याल में उस दिन उस सारी मीटिंग का जो मेहमान खसूसी है, सेंट्रल फिगर है, वो खुदावंद यीशु है, जो कि सारों की आंखें किस पर लगी हैं? यीशु पर। जैसे आप सबकी आंखें इधर लगी हुई हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है यीशु कैसी ऐसी जगह खड़ा होगा जहां पर सारे लोगों की आंखें किस पर लगी हैं? यीशु नासरी पर लगी है। वो बैठ गया लेकिन आंखें उस पर लगी थी। और लिखा वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। वैसे ये अच्छा नहीं, ये प्रॉफेसी का बड़ा अच्छा लेसन है, हम बाइबल में से आयतें निकालें और कहें ये पेशन गोई है, मतलब पूरी हुई है। यीशु ने भी प्रोफेटिक लेसन दिया, उसने कहा ये पेशन गोई है जो आज तुम्हारे सामने पूरी हुई है। और सब ने उस पर गवाही दी। और 22वीं आयत है जिधर मैं आना चाहता हूँ, और लिखा सब ने उस पर गवाही दी। कितने जो इबादत खाने में बैठे थे उनमें से कितने लोगों ने गवाही दी? सब ने गवाही दी। और उन पुर फजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी ताज्जुब करके कहने लगे। यीशु के मुंह से बातें कैसी निकल रही थी? फजल की बातें। मुझे नहीं पता अंग्रेजी में क्या क्या लिखा है यहां पर, ग्रेशियस वर्ड्स, ग्रेस से भरी हुई बातें, फजल से भरी हुई बातें। वैसे खुदावंद यीशु जब बातें करता था तो उसकी बातें कैसी थी? पुर फजल बातें। और कलाम का अंदर लिखा तुम्हारा कलाम ऐसा पुर फजल और नमकीन हो कि हर शख्स को मुनासिब जवाब तुम्हें देना आ जाए। हमारी बातें भी पुर फजल होनी चाहिए। यीशु की बातें पुर फजल हैं, हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? पुर फजल होनी चाहिए। और ऐसी जब बातें होंगी तो खुदावंद उनको यादगार का दफ्तर लिख लेगा। और आखिर में मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यादगार का दफ्तर बहुत कम ही लिखा गया। मुझे दो तीन बुक ऑफ रिमेम्बरेंस जो है ना, ये दो तीन जगहों पर आई है। एक नंबर पर तो मैं सोच रहा था कुर्नीलियस पता नहीं कितनी देर दुआ करता रहा, लेकिन एक दिन फरिश्ता आया, उसने कहा कुर्नीलियस तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी दुआएं और खैरात यादगारी के तौर पर खुदा के हजूर पहुंची। याद, इसका मतलब है जितनी दुआएं वो कर रहा था खुदा के हजूर लिखी जा रही थी और फिर उनकी याद हुई। जो भी वो खुदा को खैरात दे रहा था, खुदा के लिए दे रहा था, इसलिए मैं खुदा को देने के लिए खुदा के की खिदमत के नजरिया से देना चाहिए, क्योंकि बंदा शायद कोई भी ना देख रहा हो, खुदा देख रहा है। और अगर बंदों को दिखाने के लिए देंगे तो फिर लिखा यही अजर है जो हमें मिलेगा, लोगों की वाह वाह हो जाएगी, ये इसने बड़े दिए हैं, बस इससे ज्यादा अजर हमें नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर अजर चाहते हैं या वहां चाहते हैं? मेरे ख्याल में वहां पर अजर चाहते हैं। सो कुर्नीलियस जितनी दुआएं कर रहा है और जितना खुदा को दे रहा है वो खुदा के रिकॉर्ड में था और उसकी बुक में लिखा हुआ था। सो शायद आप थक गए हैं तो बड़ी मैंने दुआ की है इस बात के लिए, अभी तक जवाब नहीं मिला। याद रखें हमारी दुआएं रिकॉर्ड होती हैं और खुदा के हजूर में पहुंचती हैं। हमारी दुआएं ऐसे अल्फाज नहीं है जो हवा में तहलील हो जाते हैं, हमारी दुआएं खुदा तक पहुंचती हैं। कलाम में क्या लिखा है? खुदा की निगाह उसके मुकद्दसों पर है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे, वो सुन रहा है, वो हर बात सुनता है। और फिर मुकाशफा की किताब में लिखा है वो औद सोच दिए गए जो खुदा के हजूर पेश किए गए, और लिखा ये मुकदसों की दुआएं हैं। मैं टाइम बचाने के लिए पढ़ नहीं रहा, लेकिन मुकाशफा आठवें बाब में ये लिखा हुआ है। दाऊद कहता है तूने मेरे आंसू मशकीजे में रख लिए। जब दुआएं करता है, रोता है, तो खुदा उसके एक एक आंसू की कदर करता है और उसको अपने मशकीजे में ऐसे जैसे स्टोर कर रहा है, और जो मशकीजे में रखी हुई है आंसू है खुदा उनको भूलता नहीं है। इसीलिए तो खुदा कहता है मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। सो हमारी दुआएं खुदा के हजूर यादगारी के तौर पर पहुंचती हैं, हमारी खैरात खुदा के हजूर यादगारी के लिए पहुंचती है, और हमारी अच्छी बातें पुरफजल बातें खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदा के हजूर निकल। तो ये तीन बुक ऑफ रिमेम्बरेंसेस है, हमारी खैरात की, हमारी दुआओं की और हमारी गुफ्तगू की, हमारी बातों की। किताब कैसी लिखी जाएगी जैसी आप बातें करेंगे जो फीड करेंगे वही आउटपुट होगी, ऐसे ही है ना, जो आप बोलेंगे वही है जो रिकॉर्ड होगा। मैं चाहता हूं मेरी किताब में अच्छी बातें दर्ज, क्योंकि उसने किताब में खोली जानी। सो आइए खड़े हों खुदा की हजूरी में, भाई सलीम से मेरी दुआ करें, आए और दुआ करें। हालेलुया हालेलुया।